ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। श्री धनखड़ ने नई दिल्ली में आज उपराष्ट्रपति एनक्लेव में राज्यसभा प्रशिक्षुओं के छठे बैच को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ता का प्रयोग करते समय व्यक्ति को अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए।
We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution and Article 145(3).
उपराष्ट्रपति का ये बयान सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय के कुछ दिनों बाद आया है। श्री धनखड़ ने सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत पर बल देते हुए कहा कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन कार्यकारी शासन न्यायपालिका का होने पर कोई व्यक्ति कैसे सवाल पूछ सकता है और चुनाव में किसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों सहित मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली और रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं की बड़ी संख्या के कारण पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सुनवाई के लिए 5 प्रमुख याचिकाओं की पहचान करने को कहा है। मामले की अब सुनवाई 5 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यमुना की सफाई और कायाकल्प के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें नदी की सफाई के लिए एजेंसीवार कार्य योजना की समीक्षा भी की गई। श्री मोदी ने सलाह दी कि नालियों का प्रवाह मापने के साथ साथ सीवेज उपचार संयंत्रों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए सूक्ष्म स्तर पर वास्तविक आंकड़े एकत्र करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत और बेल्जियम भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। श्री जायसवाल ने वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के षड्यंत्रकर्ता तहव्वुर राणा के भारत में प्रत्यर्पण पर कहा कि ये पाकिस्तान को मुंबई हमलों के अन्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत पर बल देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने रक्षा बजट का 75% भाग घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किया है। नई दिल्ली में आज रक्षा सम्मेलन में श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि देश में रक्षा उत्पादन वर्ष 2014 में 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्तमान में 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामला भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मुद्दा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस मामले में करीब 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति केवल 50 लाख रुपए में अधिग्रहित की गई। नए आयकर विधेयक 2025 पर लोकसभा की प्रवर समिति की नई दिल्ली स्थित संसद भवन में बैठक हुई। 31 सदस्यीय समिति का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा ने किया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेजबान मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।